بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب اردو لازمی آزمائشی اشاعت جماعت 9ویں و 10ویں کے لیے سنٹیکس بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 4 صفحہ نمبر 47 سے سنتے ہیں. دال نظریہ پاکستان کا مقصد ہے. نمبر 1 اسلامی اصولوں کی ترویج کرنا. نمبر 2 سیاست کرنا. نمبر 3 اسلامی و فلاحی مملکت بنانا. نمبر 4 اسلامی اصولوں کا یاد کرنا. ہاں ہمارا جینا مرنا ہونا چاہیے. نمبر 1 اپنے لیے. نمبر 2 دوستوں کے لیے. نمبر 3 پڑوسیوں کے لیے. نمبر 4 پاکستان کے لیے. درج ذیل مثالوں پر غور کیجئے. نمبر 1 تم اچھے بھلے پڑھے لکھے آدمی ہو, کوئی ڈھنگ کا کام کرو. نمبر 2 وہ اچھا خاصا امیر آدمی ہے, پھر بھی اپنی غریبی کو روتا رہتا ہے. نمبر 3 دونوں بھائیوں میں بس 19-20 کا فرق ہے. ان فقروں میں واوین کے درمیان الفاظ روزمرہ کی مثالیں ہیں. صفحہ نمبر 48 سوال نمبر 5. اب آپ درج ذیل کے فقروں کو روزمرہ کے مطابق درست کیجئے. نمبر 1 لگتا ہے اب اس شہر سے ہمارا پانی دانا اٹھ گیا ہے. نمبر 2 ارے بھائی بہت دنوں بعد نظر آئے, کیا چال حال ہے. نمبر 3 بڑی دوستی تھی دونوں میں لیکن آج کل کچھ بن ان ہے. سرگرمی نمبر 1 تحریک پاکستان کی اپنی پسندیدہ شخصیت پر 100 الفاظ کا مضمون اپنی کاپی میں لکھیں. ہدایات برائے اساتذہ کرام. نمبر 1 طلبہ کو مضمون نگاری کے بارے میں مفصل سمجھائیے. نمبر 2 روزمرہ کے لحاظ سے غلط فقرے درست کرنے کی مشق کرائیے. پیج نمبر 49 ڈپٹی نذیر احمد, ولادت 1831, وفات 1912. شمس العلماء خان بہادر مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی. بعد میں تعلیم کا شوق انہیں دلی لے آیا. یہاں مولوی عبد الخالق کے حلقہ درس میں داخل ہوئے. دلی کالج سے ادب, عربی, فلسفہ اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی. انگریزی ذاتی محنت اور کوشش سے پڑھی. ملازمت کا آغاز ضلع گجرات پنجاب سے مدرس کی حیثیت سے کیا. بعد میں ترقی کر کے انسپکٹر مدارس ہو گئے. پھر تحصیلدار اور بعد ازاں افسر بندوبست ہوئے. اس کے بعد ریاست حیدرآباد چلے گئے. ریٹائرڈ ہونے کے بعد دلی میں آ کر باقی زندگی تصنیف و تالیف میں بسر کی. نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے. ڈپٹی نذیر احمد نے 7 ناول لکھے جن میں میرات العروس, توبۃ النصوح, ابن الوقت, بناۃ الناش خاص طور پر قابل ذکر ہیں. پیج نمبر 50 اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا. حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید لی تھی. بڑی شان سے رہتے تھے. دیوڑی پر سپاہیوں کا گارد, اندر باہر 30-40 آدمی نوکر, گھوڑا, ہاتھی, پالکی, بھگی سواری کو موجود. فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں, جمال آرا اور حسن آرا. جمال آرا نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے بیاہی گئی تھیں. حسن آرا کی نسبت نواب جھجر کے خاندان میں ہوئی. ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا میکہ تھا. اس محلے میں تو اصغری کی لیاقت کا شور تھا. شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حال سے خوب واقف تھیں. شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے کے لیے آئیں. دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں. اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے. شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے لیکن لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں. حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا. ना माँ का लिहाज, ना आपा का अदब, ना बाप का डर। नौकर हैं कि आप नाला हैं, लौंडियां हैं कि अलग पनाह मांगती हैं। गर्ज हुसन आरा सारे घर को सर पर उठाए रहती थी। शाहजमानी बेगम के आने से चाहिए था कि बड़ी खाला समझकर हुसन आरा घड़ी दो घड़ी को चुप होकर बैठ जाती। क्या जिक्र, शाहजमानी बेगम को पालकी से उतरे देर ना हुई थी कि लगातार दो तीन फरियादें आईं कि बेगम साहब देखिए, छोटी साहबजादी ने मेरी नई ओढ़नी लीर लीर कर डाली, अब मुझे कौन बना कर देगा। गुलाब बिलबिला उठी कि हाय, मेरा कान खूना खून हो गया। बावर्ची खाने से मामा ने दुहाई दी, अच्छी खुदा के लिए कोई उनको समझाता, सालन की पतीलियों में मुट्ठियां भर भर कर राख झोंक रही हैं। शाहजमानी बेगम ने आवाज दी, हुसना यहाँ आओ। हालांकि आवाज पहचान बारे हुसनारा चली तो आई, लेकिन न सलाम न दुआ, हाथों में राख, पाँव में कीचड़, उसी हालत में दौड़ खाला से लिपट गई। खाला ने कहा, हुसना तुम बहुत शोखी करने लगी हो। हुसनारा ने कहा, इस सुम्बुल चुड़ैल ने फरियाद की होगी। ये कहकर खाला की गोद से निकल लपक कर सुम्बुल का सर खसोट लिया। वही तरह खाला ए ए करती रही, एक न सुनी। शाहजमानी बेगम अपनी बहन की तरफ मुखातिब होकर बोली, बुआ सुल्ताना, इस लड़की के लिए तो खुदा के वास्ते कोई अस्तानी रखो। शाहजमानी बेगम, उई बुआ, तुम्हारी भी कहावत वही है, ढंडोरा शहर में, बच्चा बगल में। खुद तुम्हारे मोहल्ले में मौलवी मोहम्मद फाजिल की छोटी बहू लाख उस्तानियों की एक उस्तानी है। सफा नंबर 52। सुल्ताना, मुझको आज तक इत्तला नहीं, देखो मैं आदमी भेजती हूँ। ये कहकर अपने घर की दारोगा को बुलाया कि मानी जी, कोई मौलवी साहब इस मोहल्ले में रहते हैं। बाजी अम्मा कहती हैं उनकी छोटी बहू बहुत पढ़ी लिखी हैं, देखो अगर उस्तानी गिरी की नौकरी करें तो उनको बुला लाओ। मानी जी मौलवी साहब के घर आई, मोहम्मद कामिल की माँ से साहब सलामत हुई। मानी जी तुम्हारी छोटी बहू कहाँ है? मोहम्मद कामिल की माँ कोठे पर हैं। मानी जी मैं उनके पास ऊपर जाऊंगी। दयानुद्दीन निसा, बहू साहब यहीं आ जाएंगी। तमीज़दार बहू के नीचे उतरने का वक्त आ गया था, क्योंकि असर की नमाज पढ़कर असगरी नीचे उतर आती थी और मगरिब और इशा दोनों नमाजें पढ़ा करती थी। असगरी को मानी जी ने देखा तो बातों ही बातों में इतना कहा कि बेगम साहब को अपनी छोटी लड़की का तालीम कराना मंजूर है। बड़ी बेगम साहब ने आपका जिक्र किया तो बेगम साहब ने मुझको भेजा। असगरी, दोनों बेगम साहबों को मेरी तरफ से बहुत सलाम कहना। मेरा जी बहुत चाहता है कि बेगम साहब की लड़की को पढ़ाऊं, लेकिन क्या करूं, ना तो बेगम साहब लड़की को यहाँ भेजेंगी और ना उनके घर मेरा जाना हो सकता है। मानी जी ने तनख्वाह का नाम तो ना लिया, लेकिन दबी जबान से इतना कहा कि बेगम साहब हर तरह से खर्च पात की जिम्मेदारी करने को मौजूद हैं। पेज नंबर 53। असगरी, ये सब उनकी मेहरबानी है, उनकी रियासत को यही बात जेबा है, लेकिन उनके जेर साया हम गरीब भी पड़े हैं तो खुदा नंगा भूखा नहीं रखता। बिन दामों के लौंडी बनकर खिदमत करने को तो मैं हाजिर हूँ, और अगर तनख्वाहदार उस्तानी दरकार हो तो शहर में बहुत मिलेंगी। असगरी की गुफ्तगू सुनकर मानी लट्टू हो गई। हर चंद के नवाबी कारखाने देखे हुए थे, मगर असगरी की शुस्ता तकरीर सुनकर दंग हो गई और माजरत की के भी मुझको माफ करना। गर्ज मानी जी रुखसत हुई और वहां जाकर कहा, बेगम साहब उस्तानी तो वाकई में लाख उस्तानियों की एक उस्तानी है, जिसकी सूरत देखने से आदमी बन जाए, पास बैठने से इंसानियत सीखे, साया पड़ जाने से सलीका सीखे, हवा लग जाने से अदब पकड़े, लेकिन नौकरी करने वाली नहीं, तहसीलदार की बेटी है, रईस लाहौर के मुख्तार की बहू, घर में मामा नौकर है, दालान में चांदनी बिछी है, सोजनी गांव तकिया लगा है, अच्छी खुशगुजरान जिंदगी, भला उनको नौकरी की क्या परवाह है। शाहजमानी बोली, सच है बुआ सुल्ताना, तुमने मानी जी को भेजा तो था, लेकिन मुझको यकीन ना था कि वो नौकरी करेंगी। मानी जी, लेकिन वो तो ऐसी आदमी है कि मुफ्त पढ़ाने को खुशी से राजी हैं। सुल्ताना ने पूछा, क्या यहाँ आकर? मानी जी, भला बेगम साहब जो नौकरी की परवाह नहीं करता वो यहाँ क्यों आने लगा? सुल्ताना, क्या फिर लड़की वहाँ जाया करेगी? शाहजमानी, इसमें कबाहत की क्या बात है? सुल्ताना, खैर हुसनारा वहीं चली जाया करेगी। सफा नंबर 54। अगले दिन शाहजमानी बेगम और सुल्ताना बेगम दोनों बहनें हुसनारा को लेकर असगरी के घर आईं। दोनों बहनों ने असगरी से कहा कि मेहरबानी करके इसको दिल से पढ़ा दीजिए। असगरी, अव्वल तो खुद मुझको क्या आता है, मगर जो जो चार हरूफ बुजुर्गों की इनायत से आते हैं, इंशाल्लाह उनके बताने में अपने मकदूर भर दरेग ना करूँगी। چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفی دینے لگیں۔ اصغری، اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں پڑھوائی آپ سے لوں۔ سلطانہ، استغفر اللہ، پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا منہ ہے، بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ اصغری، ہاں شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں، سو اشرفی کیا ہوگی، بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو سیر آت سیر مٹھائی کافی ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا، وہ ایک قاب بھر کر نکتیاں لائی۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور بھری قاب دیانت کو دی کہ سب بچوں کو بانٹ دو۔ غرض دنیا سازی کی باتیں ہو ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئیں اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر گئیں۔ ماخوذ از مرات العروس، پیج نمبر 55، مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتائیے۔ بے، سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ جیم، حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی۔ دال، شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا۔ ہاں، اصغری نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے کہاں بلایا۔ سوال نمبر 2، درج ذیل درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ الف، فتح اللہ خان نے اندور میں املاک خریدی۔ نمبر 1، سینکڑوں روپے کی۔ نمبر 2، ہزاروں روپے کی۔ نمبر 3، لاکھوں روپے کی۔ نمبر 4، اربوں روپے کی۔ بے، شاہ زمانی بیگم اتری۔ نمبر 1، پالکی سے۔ نمبر 2، رکشے سے۔ نمبر 3، بھگی سے۔ نمبر 4، گھوڑے سے۔ جیم، محمد فاضل کی چھوٹی بہو تھی۔ نمبر 1، کام چور۔ نمبر 2، کم عقل۔ نمبر 3، عمر رسیدہ۔ نمبر 4، پڑھی لکھی۔ دال، سلطانہ بیگم چلتے ہوئے اصغری بیگم کو دینے لگی۔ نمبر 1، اشرفی۔ نمبر 2، بریانی۔ نمبر 3، کپڑے۔ نمبر 4، مٹھائی۔ ہاں، دیانت قاب میں بھر لائی۔ نمبر 1، نکتیاں۔ نمبر 2، اشرفیاں۔ نمبر 3، کھیر۔ نمبر 4، روٹیاں۔ پیج نمبر 56، سوال نمبر 3، درج ذیل کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ الف، جمال آرا اور حسن آرا کا باپ۔ بے، اصغری۔ نمبر 2، سلطانہ کی بہن۔ بے، دیانت النساء۔ نمبر 3، محمد کامل کی بیوی۔ بے، حکیم روح اللہ خان۔ نمبر 4، اصغری کی ساس۔ بے، فتح اللہ خان۔ 5، فتح اللہ خان کے بڑے بھائی۔ بے، شاہ زمانی بیگم۔ سوال نمبر 4، درج ذیل کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھیے۔ الف، دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں، اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ بے، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ اور محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ لٹو ہونا، دریغ نہ کرنا، شستہ، نالا، قباحت، سرگرمیاں۔ نمبر 1، طلبہ کمرہ جماعت میں یہ سبق ڈرامائی انداز میں پیش کریں۔ نمبر 2، طلبہ اچھی عادات کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ ناول سادہ زبان میں ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے معمولی اور روزانہ پیش آنے والے واقعات کو دلچسپ انداز میں تحریر کیا جاتا ہے۔ پلاٹ، منظر نگاری، کردار نگاری، مکالمہ نگاری اس کے بنیادی عناصر ہیں۔ ہدایات برائے اساتذہ۔ نمبر 1، طلبہ کو ناول نگاری کے بنیادی فنی نکات سے آگاہ کیجیے۔ نمبر 2، اپنی نگرانی میں اس سبق کا ڈرامہ تیار کرائیے۔ نمبر 3، ناول کے بارے میں دی گئی تعریف کی وضاحت کیجیے۔ پیج نمبر 57، منشی پریم چند، ولادت 1880، وفات 1936। आपका असल नाम धनपत राय था। जिला बनारस के एक गांव में पैदा हुए। वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। प्रेमचंद ने एक मौलवी साहब से फारसी और उर्दू की तालीम हासिल की, जबकि अंग्रेजी तालीम बनारस में हासिल की। तालीम से फारिग होकर एक प्राइमरी स्कूल में उस्ताद हो गए। 1908 में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस हो गए। प्रेमचंद की अदबी जिंदगी का आगाज 1901 से हुआ। आपने मुंशी दयानराय नगम के रिसाले जमाने में मजामीन लिखे, फिर अफसाना निगारी और नावल निगारी की तरफ तवज्जो दी। प्रेमचंद ने गरीबों के हालात और वाकयात को अपने अफसानों और नावलों का मौजू बनाया। प्रेमचंद का शुमार उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में होता है। सोजे वतन, वारदात, बेवा, बाजार हुसन, जादेरा, नर्मला, मैदान अमल, गउदान, प्रेम बत्तीसी, प्रेम पच्चीसी, प्रेम चालीसी और चौगान हस्ती उनकी मशहूर तसानीफ हैं। उन्होंने कुल 29 नावल लिखे। पेज नंबर 58, बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस बाकी ना थी। आंखें, हाथ पैर सब जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और जब घर वाले कोई बात उनकी मर्जी के खिलाफ करते, खाने का वक्त टल जाता या मकदार काफी ना होती या बाजार से कोई चीज आती और उन्हें ना मिलती तो रोने लगती थीं। और उनका रोना महज बसोरना ना था, वो बा आवाजें बुलंद रोती थीं। उनके शौहर को मरे हुए एक जमाना गुजर गया। सात बेटे जवान हो होकर दाग दे गए और अब एक भतीजे के सिवा दुनिया में उनका कोई ना था। इसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी जायदाद लिख दी थी। इन हजरत ने लिखाते वक्त तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन वो वादे सिर्फ वो सब्ज बाग थे। इस जायदाद की सालाना आमदनी 150-200 रुपए से कम ना थी, लेकिन बूढ़ी काकी को अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता। बुध राम तबीयत के नेक आदमी थे, लेकिन उसी वक्त तक कि उनकी जेब पर कोई आंच ना आए। रूपा तबीयत की तेज थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी पर उसकी तेजी इतनी ना खलती थी जितनी बुध राम की निकी। बुध राम को कभी कभी अपनी बेइंसाफी का एहसास होता। पेज नंबर 59। वो सोचते कि इस जायदाद की बदौलत मैं इस वक्त भला आदमी बना बैठा हूँ, और अगर जबानी तस्कीन या तशफी से सूरत हाल में कुछ इसलाह हो सकती तो इन्हें मतलब दरेग ना होता, लेकिन मजीद खर्च का खौफ इनकी नेकी को दबाए रखता था। सारे घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो बुध राम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के खौफ से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। रात का वक्त था, बुध राम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी और गाँव के बच्चों का जम्मे गफीर निकाहे हैरत से गाने की दाद दे रहा था। चारपाइयों पर मेहमान लेटे हुए नाइयों से टिकियां लगवा रहे थे। बुध राम के लड़के सिख राम का तिलक आया है, ये उसी का जश्न है। घर में मस्तूरात गा रही थी और रूपा मेहमानों की दावत का सामान करने में मसरूफ थी। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। वो दिल में सोचती थी शायद मुझे पूरियां ना मिलेंगी, इतनी देर हो गई कोई खाना लेकर नहीं आया। बूढ़ी काकी के चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर दिखती, क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पेज नंबर 60। पूरियां छुन छुन कढ़ा में तैरती होंगी, कढ़ा से गर्मा गर्म निकलकर कटौती में रखी जाती होंगी। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासीमगी की हालत में थी, इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास, कभी कोठे पर। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सिद्धार्थ निकाल रही थी, एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा कि अभी खाना तैयार होने में कितनी देर है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझुलाती थी, कुड़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका ना पाता था। खौफ होता था कि कहीं पड़ोसन ये ना कहने लगे कि इतने ही में उबल पड़ी। प्यास से खुद उसका हलक सूखा जाता था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, लेकिन इतनी फुर्सत कहाँ कि जरा पानी पी ले या पंखा लेकर झले। ये भी अंदेशा था कि जरा निगाह पलटी और चीजों की लूट मची। इस कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा ना रुक सका, ये ख्याल ना रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, दिल में क्या कहेंगी, मर्दाने में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे मेंढक केचवे पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड है, कोठरी में बैठे क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया तब तक सबर ना हो सका। पेज नंबर 61। आकर छाती पर सवार हो गई, गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह बौखलाई फिरती है। इस ख्याल से उसका गुस्सा और भी तेज हो गया। नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा के दम लेगी, इतना ठूसती है ना जाने कहाँ भसम हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। बूढ़ी काकी ने सरना उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई वापस से अपने कमरे में चली गई। लाडली को काकी से बहुत उंस था, भोली भाली सीधी लड़की थी, तिफला ना शोखी और मुसर्रत की इसमें बूतक ना थी। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सारी पूरियां नहीं दे देते, मेहमान सबकी सब थोड़े ही खा जाएंगे, और अगर काकी ने मेहमानों से पहले ही खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो काकी के पास जाकर उन्हें तशफ़ी देना चाहती थी, लेकिन वहाँ के खौफ से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां मुतलक ना खाई, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी, उसका दिल बेकरार हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनते ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे, रूपा आंगन में सो रही थी, लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़ियों की पटारी सामने ही रखी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं, तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं, चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ चूल्हों में आग चमक रही थी। पेज नंबर 62। लाडली की निगाह दरवाजे वाले नीम के दरख्त की तरफ गई, मारे खौफ के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा, लाडली को ढारस हुई। कई सोते हुए आदमियों की निस्बत एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए ज्यादा तकवियत का बाइस हुआ। उसने पटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ, काकी ने लाडली की आवाज पहचानी, चुटपुट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? काकी पूरियों पर टूट पड़ी, 5 मिनट में पटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हफ्स पैदा कर देती है, इसी तरह इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तहा और रगबत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। काकी ने पटारी को फिर टटोला, इसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मंशा ना समझ सकी, उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे झूठे पत्तलों के सामने बिठा दिया और गरीब भूख की मारी फातिरुल अक्ल बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। पेज नंबर 63। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली, उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है, क्योंकि चारपाई की इधर उधर ताकने लगी, कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सुन सा हो गया। रूपा को अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नजर ना आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत, और मेरे कारण मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं उनके इशारे की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस तकलीफ के दिन भी पेट भर खाना ना दे सकी। महज इसलिए ना कि वो बुढ़िया है, बेकस है, बेजबान है। उसने चराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाजा खोला और एक थाली में खाने की सब चीजें सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। आधी रात हो चुकी थी, आसमान पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए फरिश्ते बहिश्ती नेमतें सजा रहे थे, लेकिन उनमें किसी को वो मुसर्रत न हासिल हो सकती थी जो बूढ़ी काकी को अपने सामने थाल देख कर हुई। रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना, पर महात्मा से दुआ करो कि मेरी खता माफ कर दे। पेज नंबर 64। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुरकियाँ सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रुएं से सच्ची दुआएं निकल रही थीं और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। महफूजत प्रेमचंद के मुख्तलिफ मुंतखब अफसाने। मश सवाल नंबर 1, दर्जेल सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुद्ध राम के नाम क्यों कर दी थी? बे, बुद्ध राम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी से कैसा सलूक किया? जीम, बुद्ध राम के घर में किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? दाल, बूढ़ी काकी भूख से बेताब होकर जब कड़ाह के पास पहुंची तो रूपा ने उनके साथ कैसा सलूक किया? हा, लाडली ने अपनी गुड़ियों की पटारी में पूरियां क्यों छुपाई थीं? वाओ, पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाते देख कर रूपा का क्या हाल हुआ? जे, रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर क्या कहा? सवाल नंबर 2, इस अफसाने का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। सवाल नंबर 3, इस अफसाने की फिक्री और फनी खूबियां बयान कीजिए। सवाल नंबर 4, दर्ज ज़ेल अल्फाज और मुहावरात अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, जमे गफीर। नंबर 2, इश्तहा। नंबर 3, नाक कटवाना। नंबर 4, भंडारे। नंबर 5, नाम बेचना। नंबर 6, सब्ज बाग दिखाना। पेज नंबर 65। सवाल नंबर 5, दर्ज ज़ेल में दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, बुढ़ापा दौरे सानी हुआ करता है। नंबर 1, कुफूलत का। नंबर 2, बचपन का। नंबर 3, बलूगत का। नंबर 4, जवानी का। बे, बुढ़िया के जवान बेटे मर गए थे। नंबर 1, 5। नंबर 2, 6। नंबर 3, 7। नंबर 4, 8। जीम, बुद्ध राम आदमी थे। नंबर 1, चालाक। नंबर 2, मक्कार। नंबर 3, नेक। नंबर 4, बेवकूफ। दाल, रूपा सो रही थी। नंबर 1, आंगन में। नंबर 2, कमरे में। नंबर 3, कोठरी में। नंबर 4, बरामदे में। हा, बुद्ध राम की छोटी लड़की थी। नंबर 1, मंचली। नंबर 2, लाडली। नंबर 3, जिद्दी। नंबर 4, चंचल। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। नंबर 1, इतनी देर हो गई कोई खाना लेकर नहीं आया। नंबर 2, लंबे चौड़े वादे। नंबर 3, अकेली औरत। नंबर 4, बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी होता है। नंबर 5, सब्ज बाग। नंबर 6, अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता है। ऊपर दिए गए जुमलों में कुछ जुमले मुकम्मल हैं, इनमें बात भी पूरी हो रही है और मतलब भी पूरे तौर पर वाजे हो रहा है। लफ्जों के ऐसे मजमुए को जिसमें लफ्जों के दरमियान ताल्लुक और लगाव पाया जाए, उसे मुरक्कब ताम कहते हैं। जुमला 1, 4 और 6 मुरक्कब ताम के जुमले हैं। इसके बरक्स जुमला 2, 3 और 5 में बात पूरी नहीं हो रही और मतलब भी पूरे तौर पर वाजे नहीं हो रहा, ایسے لفظوں کے مجموعے کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 4 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 5 میں سنیے۔